माउंट टाबू में बाबा के समय का क्लास चल रहा था 5 जून 1967। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी भक्ति मार्ग में, कह देते हैं भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है। अब भगवान को सुखदाता कहा जाता है या दुखदाता कहा जाता है? भगवान को तो सबको ही सुखदाता कहते हैं, फिर ऐसे क्यों कह देते हैं भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है? ये भक्ति मार्ग में जो कहने की बातें हैं, भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि भगवान ही सुख देते हैं, भगवान ही दुख देते हैं, ये सूटिंग ब्राह्मणों की संघ में की दुनिया में होती होगी भक्तों के साथ, क्योंकि भगवान के भक्त भी होते हैं, भगवान की प्रजा भी होती है, बाप की प्रजा भी होती है, भगवान के भक्त भी होते हैं, बाप के वारस भी होते हैं। तो कोई भक्तों ने शूटिंग की है क्या कि भगवान सुख भी देते हैं और भगवान दुख भी देते हैं? वो कौन से भक्त रहे होंगे? वो कहते हैं भगवान दुख देते हैं, भगवान सुख देते हैं। जो भगवान के प्रैक्टिकल रूप को पूरा नहीं पहचान पाते, अधूरा अधूरा पहचानते, भगवान के माँ के प्यार के स्वरूप को पहचानते हैं, लेकिन बाप जो वर्षा देने वाला है उस रूप को नहीं पहचानते हैं, वो फिर अंत में बोलने लगते हैं कि तू ही दुख देता है, तू ही हमें दुख दिया और तू ही अब मेरे को दुख देता है, ठुकराता है, चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए। अब भगवान की ठुकराता है क्या? भगवान तो आता है, सब बच्चों को गले लगाता है, ऐसे कह देते हैं। अभी तुम बच्चे तो ऐसे नहीं कहेंगे, अभी अभी तुम बच्चे तो ऐसे नहीं कहेंगे कैसे कि भगवान ही सुख देते हैं, भगवान ही दुख देते हैं। अच्छा, अभी नहीं कहेंगे, आगे चल के कहेंगे क्या? जब ज्यादा माया परीक्षा लेगी, फाइनल परीक्षाएं होंगी, विनाश का टाइम आएगा, तब ऐसे कहेंगे क्या कि भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है? नहीं कहेंगे, पक्का रखना। अभी तुम जानते हो कि सतयुग में सुखदाम था, क्यों सतयुग में सुखदाम क्यों था, कलयुग में सुखदाम क्यों है? कलयुग अर्थात झूठ खंड, जैसे कोई उधार लेता है ना, उससे जब कोई मांगने जाता है कि हमारा उधार लिया है वापस तो दे दो, अच्छा कल दे दो, कल गए, अरे हमने कहा था कल दे देंगे, बातें बनाना शुरू। तो ये बातें बनाने वालों की झूठी दुनिया है, इसको झूठ खंड कहा जाता है। झूठ खंड में दुखदाम बन जाता है, पाई के कारण बना, झूठ के कारण दुखदाम बन जाता है। सतयुग में सुखदाम था, वहां दुख का नाम निशान नहीं था, क्यों? क्योंकि सत्य ही सत्य था, असत्य का नाम निशान नहीं था। कलयुग में है दुखदाम, अभी सुख का नाम निशान नहीं। ये तो तुम जानते हो कि ऊंचे से ऊंचे भगवान है, भगवान को ऊंची से ऊंची क्यों कहा? भगवान की तुलना किससे कर दी? ऊंच से ऊंच किससे ऊंचे? की ना, किससे तुलना की? जो भी देवताएं हैं, जो भी मनुष्य मात्र है, जो भी गुरु है, जो भी धर्म पिताएं हैं, उन सब से तुलना की कि वो ऊंचे ऊंचे हैं। कौन है ऊंचे ऊंचे? परम पिता, सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल के लिए ऊंचे और नीच की बात नहीं, वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है। उसकी तुलना तो किसी से कर ही नहीं सकते। वो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश होकर के भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, उसकी बात है कि वो है ऊंचे से ऊंचे भगवान। क्योंकि ऊंचे और नीचे का सवाल इस दुनिया के रहवासियों के लिए है। जो सुप्रीम सोल शिव है, वो तो इस दुनिया का रहने वाला ही नहीं है, सिर्फ आता है ज्ञान सुनाने के लिए। अब ज्ञान सुन करके जो ऊंच कर्म करते हैं वो ऊंच कहे जाते हैं, और सुन करके भी जो नीच कर्म करते हैं वो नीच कहे जाते हैं। तो ऊंच से ऊंच वो भगवान है, और वो सब आत्माओं का भी बाप है। जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उन सब का बाप है। शरीर के बाप को तो सभी जानते हैं। जितने जितने 84 के चक्र में शरीर धारण किए उतने उतने बाप हुए। परंतु ये किसी को पता नहीं है कि आत्माओं का बाप कौन है, और कैसे इस शक्ति पर प्रत्यक्ष होता है। आत्मा है ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। लेकिन पता कैसे चलता है कि वो ज्योति बिंदु बाप कौन? क्योंकि बिंदु बिंदु आत्मा तो सब एक जैसे, पता कैसे चले? तो कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो पता चलता है कि ये सब का बाप है। वो बापों का बाप है, टीचर्स का टीचर है, सुप्रीम टीचर है, सब गुरुओं का गुरु है। उसका कोई गुरु नहीं, उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं, और उसको वर्षा देने वाला कोई बाप भी नहीं। उसकी आत्मा को जन्म देने वाला, आत्मा की पहचान देने वाला कोई भी बाप नहीं, साकार में कोई नहीं। इसलिए बोला कि वो सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है। हम सब कहते भी हैं कि हम आपस में ब्रदर से हैं, क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो जरूरी है कि सब एक बाप के बच्चे ठहरे ना। एक बाप के बच्चे तो एक परिवार हो जाता है, एक परिवार हो जाता है तो कोई एक माँ भी ठहरी। एक माँ एक बाप सब बच्चे तो एक परिवार हो गया। तो वो हम सबका बाबा भी है। तो जरूरी है कि सब बच्चे आपस में भाई भाई। बीच में कोई कोई कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है तो सब बाप हो गए। सब कैसे बाप होंगे? एक बाप बाकी सब बच्चे। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापी होकर के आता हूं। भगत लोग क्या कह देते हैं? कर देते हैं सर्वव्यापी कर देते हैं। ये शूटिंग कहाँ होगी? कैसे कैसे ब्राह्मणों के संग मिली दुनिया में ये शूटिंग हुई या हो रही है? जिन्होंने भी अधूरी नॉलेज ली है, जिन्होंने बेसिक नॉलेज ली है, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी है, भगवान तो बेसिक नॉलेज भी देखता है फिर उनकी पढ़ाई भी पढ़ाता है। तो जिन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी है वो ही अधूरी पढ़ाई पढ़ने वाले जो भक्त हैं, वो ऐसे कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी, मेरे में भी है तेरे में भी है। वो दृष्टि से शक्ति सुधारता है, मेरे में भी सुधारता है, तेरे में भी प्रवेश करके दृष्टि से शक्ति सुधारता है। तुम भी दृष्टि से शक्ति सुधार सकते हो, आओ संदली पे बैठो। हम भी दृष्टि से शक्ति सुधार सकते हैं, आओ संदली पे बैठो। इतना ही नहीं, वो समझते हैं गीता का भगवान दादा लेकर आगे कृष्ण और ब्रह्मा है, वो ही एक साकार भगवान है गीता का। इसके अलावा और कोई गीता का भगवान नहीं है। ये बात उनकी बुद्धि में बैठती तो है, सर्वव्यापी क्यों कह देते? कहते वो शरीर छोड़ता है, ज्ञान सुनाने के लिए आता है, गीता ज्ञान देता है, गीता ज्ञान देने के बाद फिर उनका काम खलास हो जाता है, फिर नई दुनिया बनाने और पुरानी दुनिया का विनाश कराने का काम हमारा है। और मेगा प्रोग्राम और छपा बड़े बड़े पोस्टर, ऊपर शिव का चित्र और नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र। कौन कौन ब्रह्मा विष्णु शंकर बनते हैं? वो इकट्ठी होकर के त्रिमूर्ति शिव बन जाते हैं। अरे बाप कहते हैं मैं तो एक ही मुकर रथ में आता हूँ, आज में भी एक ही मुकर रथ में था, मध्य में भी एक ही मुकर रथ के द्वारा बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता हूँ। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी मनाते हैं और अंत में एक ही मुकर रथ के रूप में सारे संसार में प्रत्यक्ष हो जाऊंगा। 5-6-7 की वाणी का दूसरा पेज कह लेते हैं सर्वव्यापी है, तेरे में है मेरे में है। अरे तुम तो आत्मा हो या परमात्मा हो? तुम अपन को परमात्मा कहते हो तो परम पाठधारी तो हो, तुम हीरो पाठधारी हो। सारी शक्ति में तुमने जो पाठ बजाया या जो बजाए रहे हो वो हीरो पाठ तुम्हारा है। जो हीरो पाठधारी होता है वो आज में भी हीरो होता है, मध्य में भी हीरो होता है और अंत में भी हीरो पाठ हो जाता है। क्योंकि आज में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि नारायण का राज्य था, जो नारायण था सोलह कला संपूर्ण देवता था, वो ही जन्म के चक्र में आते आते अंतिम जन्म में क्या बन जाता है? अंतिम जन्म में पतित नर बन जाता है। नर को फिर नारायण बनाता हूं, ये गीता का ज्ञान है कि हे अर्जुन तू ऐसे कर्म कर जो नर से नारायण बन और नारी से लक्ष्मी बन। तो जो नर से नारायण बनते हैं तो पहले जन्म में हीरो पाठधारी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, मध्य में भी हीरो पाठधारी बनकर के उन्हें पाठ बजाया होगा और अंत में भी उसी नारायण में वो सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके उसको हीरो बनाते हैं। तो तुम सब तो हो आत्मा, मैं हूं तुम्हारा बाप, परम पिता परमात्मा, ये तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है? आत्मा और ये तुम्हारा शरीर। आत्मा को परमात्मा थोड़ी कहेंगे, आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, परमपिता परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। अगर वो भी जन्म मरण के चक्र में आ जाए तो इस शक्ति को उठाने वाला कोई नहीं है, पतितों को पावन बनाने वाला कोई भी नहीं। इसलिए जीवात्मा कहा जाता है, आत्माओं को जीवित आत्मा, जीवन में रहने वाली आत्मा। जीव परमात्मा थोड़े कहा जाता है, क्या जीवधारी परमात्मा है ऐसे थोड़ी कहते हैं? फिर परमात्मा सर्वव्यापी पहला कैसे हो सकता है? वो अगर सर्वव्यापी होता तो फिर फादर उड़ जाए, सभी फादर हो जाए। फादर को फादर ही से वर्षा काहे को मिलेगा? बाप से तो बच्चे को वर्षा मिलता है। अगर सभी फादर हो जाए तो फिर बाबा किनको कहें? इतनी छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आती नहीं है तो बाप कहते हैं कितने बेसमझ बन गए। हम तुमको आज से 5000 वर्ष पहले कितना समझदार बना करके गए थे, हेल्दी वेल्दी समझदार, इससे जाती समझदार और कोई हो ही नहीं सकता। जितना तुमको समझदार बनाया, कितना समझदार, इतना समझदार तुम बन गए थे कि आत्मा के अपने 84 जन्मों की सारी हिस्ट्री तुम्हारी बुद्धि में आ गई थी। इतना समझदार तुम और कोई जन्म में तुमको बनाता ही नहीं, मैं ही आकर के तुमको इतना समझदार बनाता हूं। तो बाप कहते हैं अब तुमको जो समझ मिलती है अभी संगम युग में, वो समझ फिर वहां सत्ययुग में नहीं रहेगी। इसलिए अभी जितनी समझ धारण करना चाहो कर लो, वहां ये थोड़ी मालूम रहता है कि हम फिर गिरेंगे। या तो हमें पता है कौन से युग में गिरना होता है, कौन से युग में चढ़ना होता है, कौन से युग में धीमी गति से गिरते हैं, कौन से युग में तेजी से गिरते हैं। अगर वहां सत्ययुग में ये पता हो कि हम गिरेंगे तो फिर सुख की सारी खुशी उड़ जाएगी, सुख की भावना ही नहीं आएगी, चिंता लग जाएगी। तुम जानते हो कि सत्ययुग में ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। प्राय रूप का मतलब आत्मा जो है वो अपने स्वरूप में टिक जाती है, क्या आत्मिक स्थिति की शान पक्की हो जाती है, फिर कोई परेशान होता ही नहीं। परेशान कब होते हैं? जब यहां आत्मिक स्थिति की शान में नहीं रहते, भूल जाते हैं तो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, अशांत होते हैं। और वहां तो आत्म की स्थिति पक्की हो जाती है। कब तक के लिए? 2500 साल के लिए पक्की हो जाती है। माने 2500 साल तक कोई भी आत्मा परेशान दुखी अशांत नहीं होती। तो ये बात तुम्हारी बुद्धि में अभी है, तो सत्य में ये बातें उड़ जाती है। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं ये ज्ञान लेने के लिए। जो अभी ब्राह्मण बन रहे हैं वो अधिकारी है, ब्राह्मण नहीं बन रहे हैं। ब्राह्मण बना क्या है? जो ब्रह्मा का आचरण करे सो ब्राह्मण, ब्रह्मा के आचरण को धारण न करे तो ब्राह्मण नहीं। जो ब्रह्मा के मुख से निकले सो बात माने तो ब्रह्म, और ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात न माने तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ही नहीं। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो ही इस ज्ञान के अधिकारी होते हैं। ब्रह्मा का आचरण है पवित्र रहो और पवित्र बनाओ। ज्ञान का तंत्र भी है योगी बनो पवित्र बनो। तो जो पवित्र नहीं रहते उनकी बुद्धि में से ये ज्ञान उड़ जाता है। प्रैक्टिकल ज्ञान है, ऐसे नहीं सिर्फ सुनने सुनाने गए। जो भी ज्ञान में चलने वाले हैं वो प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं कि अनेक प्रकार का वो माया नीचे गिरा देती है तो बुद्धि में से सारा ज्ञान उड़ जाता है। नहीं तो ज्ञान बुद्धि में रहता है। बाबा भी बताते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरेगा। तो ये सोने का पात्र बुद्धि जब तक रहती है माने पवित्र बुद्धि सच्ची बुद्धि रहती है। सोना माने क्या? सच्चाई। तब तक ज्ञान बुद्धि में ठहरता है। और बुद्धि सोने की न रहे मिट्टी की बन जाए, मिट्टी रूपी देह अभिमान में आ जाए तो देह मान में आने से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच विकार आते हैं और आत्मा नीचे गिर जाती है। आत्मा जब नीचे गिरती है तो ज्ञान में अंतर भूल जाता है। तो बताया ब्राह्मण ही अधिकारी होते हैं, ब्राह्मण बना पवित्र। तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण वर्ग के हैं, संगम युग में है, अभी हम बाप के बच्चे बने हैं, ब्रह्मा मुखवंशावली बने हैं, ब्रह्मा के मुख से हम भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं, तो हम ब्रह्मा मुखवंशावली हैं, ब्राह्मण वर्ग के हैं और ब्राह्मण ही ज्ञान लेने के निमित्त बनते हैं। निमित्त मन, निमित्त मन साकार में, जो साकार में ब्राह्मण है वो ही इस ज्ञान को लेने के निमित्त बनते हैं। क्या साकार में है? अगर शरीर छूट गया, कोई दीदी दादी दादाएं हैं या ब्रह्मा है या सरस्वती है उनका शरीर छूट गया तो ज्ञान लेंगे तो कोई में प्रवेश करके आज नहीं तो कल लेंगे, लेकिन निमित्त नहीं बनेंगे। और तुम निमित्त बनते हो ये ज्ञान लेने। ज्ञान ब्राह्मणों को ही सुनाते हैं। क्या ब्रह्मा के तन से जो सुनाया वो सच्चाई नहीं थी, 100% सच्चाई उसे नहीं कहेंगे। क्यों? सुनने वालों ने सुना, सुनाने वाले ने सुनाया, लेकिन एक एक वाक्य के अर्थ को किसी ने समझाई नहीं। तो जब समझा नहीं और दूसरों को समझा नहीं सके तो सच्चाई कहां बुद्धि में बैठी? इसलिए बोला कि ज्ञान हम ब्राह्मणों को ही आके सुनाता हूं, शूद्रों को नहीं सुनाता। माना यज्ञ के आज में सब थे शूद्र, 1936 से पहले 47 से पहले सब क्या थे? शूद्र। दादा लेखराज ब्रह्मा और कृष्ण की सोल के द्वारा मां के रूप में पार्ट बजाया, बेसिक नॉलेज दी, तो सब शूद्र से क्या हुए? ब्राह्मण। नंबर बार ब्राह्मण हुए कि सवेरे जैसे ब्राह्मण बन गए? नंबर बार ब्राह्मण बने। तो ब्राह्मण होते हैं बनते हैं उन्हीं की बुद्धि में ये ज्ञान बैठता। ब्राह्मण को ही ज्ञान सुनाते हैं, ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते हैं वो फिर सारी दुनिया को ये ज्ञान सुनाते हैं। गायन भी है कि भगवान ने आकर के स्वर्ग की स्थापना की। भगवान आवेगा तो क्या करेगा? स्वर्ग स्थापन करके जाएगा या बीच में ही शरीर छोड़ के चले जाएगा? भक्ति मार्ग में जो गायन है कि भगवान ही सुखदाता है, सुख की सृष्टि रचने वाला है, और जितने भी धर्म पिता है हुए धर्म तो स्थापन किए लेकिन सुख की सृष्टि
नहीं।
दुनिया दुखी दुख में और गिरती गई, दुख बढ़ता ही गया। धर्म पिताओं के आने के बाद सुख
नहीं,
सुख नहीं आया, सुख बढ़ा नहीं, सुख और ही कम होता गया। तो जो गायन है कि भगवान ही आकर के स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग बनाते हैं, वैकुंठ बनाते हैं, जन्नत रचते हैं, वो कहाँ का गायन है? इस तन में भी का गायन है। तो इससे भी साबित होता है कि ब्रह्मा के तन में आया तो, लेकिन भगवान बनकर के
नहीं आया।
अगर भगवान के रूप में आया होता तो ब्रह्मा के मंदिर होते, ब्रह्मा की मूर्ति होती, ब्रह्मा की पूजा संसार में चलती होती। और फिर बाबा ने भी मना कर दिया कि बच्चे ब्रह्मा का चित्र या मूर्ति
नहीं
बना, अगर बनावेंगे तो तुम भी पतित हो जाओगे। तो जिन्होंने मुख से निकली हुई ब्रह्मा की बात को माना वो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हुए। और वो ही ब्राह्मण जो है जब बाप टीचर के रूप में आकर के ज्ञान की एक एक बात का हिज्जा हिज्जा करके समझाते हैं तो उनकी बुद्धि में वो ज्ञान बैठता है। भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की, राजयोग सिखाया, ऊंचते ऊंचे बाप ने आकर के क्या सिखाया वो तो अभी तुम जान गए हो और सभी के लिए जानते हैं। कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, समझते हैं कि वो तो वैकुंठ का मालिक था है? जयंती मनाई जाती है तो साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? साकार की मनाई जाती है। जो कृष्ण की जयंती मनाते हैं या जो भी राम की जयंती मनाते हैं तो कभी साकार में वो आत्माओं ने पार्ट बजाया होगा? कृष्ण की जयंती मनाते हैं द्वापर में तो जरूर द्वापर युग की शूटिंग हुई होगी, है ना? कोई नाटक होता है तो उसकी रिहर्सल होती है, शूटिंग होती है। तो शूटिंग पीरियड में जब द्वापर युग की शूटिंग हो रही थी उस समय कृष्ण की आत्मा ब्राह्मण बच्चों के बीच में प्रत्यक्ष होती है और उसकी जयंती माना जन्म होता है। कहाँ जन्म होता है? जेल में जन्म होता है। जिस दिन जन्म होता है उस दिन जन्माष्टमी मनाते हैं। क्या? जन्माष्टमी मनाते हैं। कहते हैं उस दिन वो जेल से छुटकारा मिला, स्वतंत्र हुआ, कंस की जेल से स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र हुआ? अरे बच्चा पेट में होता है तो बंधा हुआ है, पेट से बाहर निकलता है तो स्वतंत्र हो जाता है। ऐसे ही वो कृष्ण की आत्मा जो बंधी हुई थी वो बाहर स्वतंत्र हुई, कंस की जेल से भी स्वतंत्र हुई। वो टाइम निश्चित हो जाता है शूटिंग पीरियड में। भक्ति मार्ग में 15 अगस्त मनाते हैं, उस स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को किसी अंदर में मनाते हैं? नहीं, भारतवासी समझते हैं कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी इसलिए स्वतंत्रता मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी ऐसा क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को कृष्ण की सोल शूटिंग पीरियड में ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में कंस की जेल से स्वतंत्र नीति, इसलिए मनाते हैं। वो स्वतंत्रता वर्ष भी होता है, स्वतंत्रता वो दिन जो है स्वतंत्रता दिवस भी होता है और जन्माष्टमी भी होती है। वो एक ही वर्ष जिस इंसिडेंट में निधा हुआ है, जिस दिन जन्माष्टमी भी होती है और उसी दिन स्वतंत्रता दिवस भी होता है। और द्वापर युग की शूटिंग में होता है, दूसरे युग की शूटिंग में ऐसा नहीं होता। कैसे ऐसी बनाते हैं, समझते हैं कि वो तो बैकुंठ का मालिक था। कृष्ण जब जन्म ले कंस की जेल से छूट जाए तो दूसरों के लिए भी जेल से छुटकारा दिलाएगा या नहीं दिलाएगा? कितने बड़े बड़े धर्म पिताए हुए, अगर वो दुखों की जेल से छूट गए होते, मुक्त हो गए होते, उनका मुक्ति जीवन मुक्ति मिले हुए होती, तो दूसरों को भी मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाते या नहीं दिलाते? न खुद जीवन मुक्ति में गए और न दूसरों को ले जा सकते। कह देते हैं महात्मा बुद्ध पार निर्वाण गया, शंकराचार्य पार निर्वाण गए, पार निर्वाण गए क्या? नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। पार जो जाएगा वो दूसरों को भी पार ले जाएगा, खुद पार ले जाएगा, दूसरों को भी पार ले जाएगा। गुरु मर जाते हैं, उनके चेले फिर दूसरा गुरु कर लेते हैं कि ये दूसरा गुरु हमको पार लगा देगा। तो इसका मतलब पहला गुरु पार नहीं गया ना, बीच में ही पुरुषार्थ करके डूब गया ना। अब कृष्ण जिसके लिए कहते हैं बैकुंठवासी था, बैकुंठ का मालिक था, वो कौन सी कृष्ण की बात है? दादा लेखराज की बात है या दादा लेखराज की ही सोल अपना शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश होकर के ज्ञान चंद्रमा का पाठ बजाती है, अधूरे चंद्रमा का पाठ बजाती है, उसकी यादगार है? संगम युग में ही कृष्ण की सोल उन पर दाता लेखराज ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके जब पाठ बजाती है, मस्तक अंदर अर्धचंद्र दिखाया जाता है, शंकर के माथे पर अर्धचंद्र। तो समझते हैं कि कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, जरूर मालिक कौन बनेगा? अरे राजाई का मालिक कौन बनेगा? ऐसे इस राजा का, इस राज्य का मालिक कौन है? जो होगा उसने पुरुषार्थ भी लिया होगा, तो वो विश्व भर का मालिक था, ये किसी की बुद्धि में नहीं है। कृष्ण सिर्फ वैकुंठ का मालिक नहीं था, क्या वो सारे ही विश्व का मालिक था? विश्व में कितने होते हैं? 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र होते हैं, सब के दिल में वो राज्य करता था। कौन? संगम जी कृष्ण प्रजापिता। तो क्योंकि मुरली में तो बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। शंकर कहो, प्रजापिता कहो, संगम जी कृष्ण कहो, नारायण कहो, बात तो एक ही हो गई। तो पता नहीं है कि कृष्ण वैकुंठ का मालिक था या सारे विश्व का मालिक था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि वो संगम जी कृष्ण तो सारे ही विश्व का मालिक था और वैकुंठ का भी मालिक था, क्या वैकुंठ की रचना की होगी तो उसका मालिक भी होगा? जब राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही राजा, एक ही भाषा, एक ही मत, एक ही कुल, उनका सारे विश्व पर राज्य था। क्या इसका कृष्ण का सारे विश्व पर राज्य था और गंगा के किनारे था।
अरे
आप तो नई बात कह दी। अभी तक कहते थे कि जमुना के किनारे स्वर्ग बनेगा और अभी क्या कह दिया, गंगा के किनारे। हाँ, गंगा के किनारे था। अब तुमको ये कौन समझा रहे हैं? क्या कि वो गंगा किनारे वाला था? वो जो सिनेमा बनाने वाले हैं उन्होंने भी ऐसे ही गीत गा दिया, दोरा गंगा किनारे वाला। तो ऐसा करे कमाल कि गंगा का लेकिन चार ऐसे कैसे गीत बनाए दिए। वो गीत बनाने वाले की बुद्धि में ये कहां से आता है? सारे विश्व पर राज्य था, गंगा के किनारे था। अब तुमको ये कौन समझा रहे हैं? ये वास्तव में है भगवान वाले। क्या भगवान वाले? कि कैसे वो गंगा किनारे वाला भी था और कैसे वो यमुना के कंधे पर भी नई दुनिया की स्थापना करता है। गंगा किनारे वाला है तो सारे विश्व के ऊपर राज्य करता है, और यमुना किनारे वाला है तो वैकुंठ का राज्य। बाकी वो सारे भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि है, यहाँ तो खुद भगवान सुनाए रहे हैं। क्या वो जो शास्त्र आदि सुनाए हैं, बनाए हैं, वो बनाने वालों ने मनुष्यों ने बनाए हैं या भगवान के पेट बनाए हैं? मनुष्यों ने बनाए हैं, और यहाँ तो खुद भगवान समझाते हैं, सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं? क्या पुरुषोत्तम बन रहे हैं? बनाने वाला शिव भगवान, जिसके द्वारा बनाता है वो खुद भी पुरुषोत्तम बनता है। तो पुरुषोत्तम हमको पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। डॉक्टर क्या बनाएगा? डॉक्टर बनाएगा। वकील वकील बनाएगा। इंजीनियर
इंजीनियर
बनाएगा। तो बनाने वाला भी प्रैक्टिकल में कौन होना चाहिए? देवदेव महादेव कहा जाता है। तो ये गायन है कि पुरुषोत्तम ही हमको पुरुषोत्तम बनाते। सारी दुनिया घोर अंधेरे में गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर बिना। कितने साल बीत गए? 70 साल बीत गए। ज्ञान गुरु प्रगटा है नहीं प्रगट प्रगटा प्रगटा तो अज्ञान अंधेर में आज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। नंबर वार बुद्धियों में ज्ञान सूर्य प्रगट हुआ, अज्ञान अंधेर में नाश हुआ, नंबर वार हुआ। मना मारे नंबर वार अभी निश्चय निश्चय बुद्धि भी बदले रहते हैं। अगर पूरा ही प्रकट हो जाए तो कभी भी आत्मा दुखी नहीं महसूस करेगी। कभी दुखी, कभी दुखी, कभी उमंग उठता और कभी चेहरा लटक जाता है। माया बायलोरा डाल लेती है। इससे साबित होता है अभी ज्ञान सूर्य जो है वो संक्षेत्र में रात के 12 बजे उदय हुआ है। अभी सब कह रहे कि हाँ यही है यही है यही है, ये किसी की बुद्धि में अभी
नहीं है।
अभी नहीं है। अभी कहते हाँ ये महात्मा है, वो महात्मा परमात्मा हो सकता है, वो हो सकता है। अच्छा ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन अभी कौन है ये पक्का निश्चय बुद्धि अभी
नहीं।
अभी नहीं बने। सारी दुनिया घोर अंधेरे में है, गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर बिना। अभी तुम आत्म को जानते हो, क्या है? अब ये है कि बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, लेकिन सन 76 रात्रि का 12 बजे का टाइम है जो विदेशियों के द्वारा ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ, जो विदेशियों की दिन की शुरुआत है वो कई बजे से होती है? रात्रि के 12 बजे। अभी भारतवासियों ने उसे नहीं समझा कि ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ, विदेशियों ने समझा कि सूर्य उदित हुआ 76 में। जो स्वदेशी है उनकी बुद्धि में अभी भी नहीं बैठा। भारतवासियों का दिन की शुरुआत कब होती है? सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तब वो दिन की शुरुआत मानते। इसका मतलब अभी भारतवासियों की बुद्धि में ज्ञान सूर्य उदय नहीं हुआ। अच्छा, ये एडवांस नॉलेज जो ले रहे हैं वो सब विदेशी है क्या? मानेंगे विदेशी है कि स्वदेशी है? कौन से देशी है? कौन से देशी है? स्वदेशी है। अरे कोट कोट पैंट पहने हुए बैठे स्वदेशी है वो तो ठीक है, बाप तो विदेशी बन के आया है तो नहीं विदेशी है बाप और क्या लगे ऐसा मैं विदेशी बन के आया हूँ मैंने है विदेशी नहीं लेकिन बच्चों को उठाने के लिए विदेशी बन के आया। बाप तो बच्चों को उठाने के लिए विदेशी बन के आया, बाकी है तो नहीं लेकिन बाप विदेशी बन के आया है। इससे साबित होता है जिनको उठाना है वो कौन से देश के हैं? विदेशी है। अच्छा तो मुंह नहीं लटका लेना है क्या? अरे हम विदेशी हो गए। आत्मा विदेशी होती है या शरीर विदेशी होता है? आत्मा स्वदेशी विदेशी होती है? कोई आत्मा ऐसी होती है जो 84 जन्म विदेश में ही लेता रहे? आत्मा कभी देश में जन्म लेती है, कभी दूसरे देश में, कभी तीसरे देश में। आत्मा स्वदेशी विदेशी नहीं होती है, आत्मा तो सब परम धाम वासी है। क्या? परम धाम वासी। आत्मा को स्वदेशी विदेशी नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? शरीर को कहेंगे। क्या है? ये गोरा है, लंबा चौड़ा है, है? ये उस देश का है, कहते हैं ना, ये नाटा है, काला है, ये अफ्रीकन है, ऐसे कहते हैं ना। ये गोल मोड़े वाला है, हट्टा कट्टा है, गोरा है, ये बौद्ध है, चीन जापान तिब्बत देश का। शरीर को कहते हैं ना, तो शरीर विदेशी होता है। लेकिन यहाँ तो विदेशी शरीर वाले कोई नहीं है। कोई है विदेशी शरीर वाले? यहाँ तो ऐसे विदेशी शरीर वाले कोई नहीं है, लेकिन स्वभाव संस्कार की बात बताई कि आखिरी जन्म में आकर के विदेशियों का प्रभाव पड़ जाता है, तो विदेशियों का प्रभाव से प्रभावित हो गए माने उनकी प्रजा बन गई। ऐसे विदेशी बच्चों को फिर बाप आकर के स्वदेशी बना दे। ये बात जरूर है कि जो अच्छे अच्छे हैंड्स होते हैं वो विदेशों में भेजे जाते हैं। क्या भारत में भी आजकल ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो अच्छी अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास पास होते हैं, फर्स्ट क्लास एग्जाम पास करते हैं, वो कहां चले जाते हैं? विदेश में चले जाते। तो यहाँ ऐसे ही है कि जो अच्छे अच्छे विदेश जो अच्छे अच्छे बच्चे थे वो सब आखिरी जन्म में आकर के विदेशी भाव स्वभाव संस्कार वाले बन जाते। उन विदेशी भाव स्वभाव संस्कार वाले बच्चों को बाप आकर के पढ़ाते हैं और जानते हैं कि ये मेरे जैनी बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई पढ़ करके विदेश में कौन जाएंगे? जो बुद्धिमान होंगे वो जाएंगे या सब जाएंगे? जो बुद्धिमान होते हैं जाते हैं। तो ये मेरे विदेशी बच्चे हैं और ये विदेशी बच्चे इतने तीव्र बुद्धि वाले हैं, बुद्धिमान बाप के ऐसे बुद्धिमान बच्चे हैं, ये बात की गहराई को पकड़ करके ऊंची पढ़ाई पढ़ करके ऊंचे से ऊंचा पद पाने वाले हैं। ऊंचे से ऊंचा पद कौन सा है? नर से नारायण। ये राजयोग की पढ़ाई यही बच्चे पढ़ सकते हैं क्या? जो आज कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं वो ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। तो बाप विदेशी बच्चों को उठा के गले लगाते हैं और कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूँ और जन्म जन्मांतर की राजाई लेने के लिए आया हूँ। तो मुंह लटकाने की बात नहीं है, है? रुद्रमाला के मणके भले सब विदेशी है फिर भी बाप का वर्षा पाने वाले हैं। बाप का वर्षा पाने वाले हम बच्चे हैं, वो जो चंद्रवंशी निकलेंगे या चंद्रवंशी राधा निकलेंगी वो राजा बनेंगे, अधिकारी बनेंगे या आमिर बनेंगे? बाप राजा बनाने के लिए आया है या आजादी बनाने के लिए आया है? बाबा तो कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए आया हूँ, मैं तुमको आमिर नहीं बनाता हूँ। वो विदेशी भारत में आए, उन्होंने ऐसी पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दी कि सब आधीन बन गए। आजकल किसी को नौकरी मिलती है तो हमें नौकरी मिल गई, पूरा परिवार बड़ा खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि मेंटेलिटी बन गई है नौकरी करने की, किसी को नौकरी मिली मैंने बहुत खुश हो। ये नहीं जानते कि नौकरी बना टोकरी, कोई के आधीन रहना। बाप आधीन बनना नहीं सिखाते, क्या बता सिखाते हैं? अधिकारी बनो, आदिम न बनो। तो इतनी ऊंची पढ़ाई जो बाप हमको राजयोग से पढ़ाने आया है उसमें हम अपने स्वमान में हैं क्या? कि हम ऊंचे से ऊंचे बाप के ऊंचे से ऊंचे बच्चे हैं, राजयोग से राजा ही प्राप्त करने वाले बच्चे, और एक जन्म की नहीं, 21 जन्म की भी नहीं, 21 जन्म की राजाई तो सुप्रीम सोल बाप ज्योति बिंदु आकर के देते हैं, लेकिन जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं उसमें पुरुषार्थ करने का मापदा सब बच्चों से जाति होता है। तो वो जो 63 जन्म का राजभाग मिलता है हर धर्म वालों को, उसकी राजाई देने के निमित्त वो बन जाता है। कौन? प्रजा। जो भी 500 करोड़ की प्रजा है और 500 करोड़ की प्रजा में जो भी दूसरे दूसरे धर्म में जाने वाली आत्माएं हैं उनको वर्षा कौन देता है राजा? उनमें उनको क्या राजाई नहीं मिलती? इब्राहिम आए, इब्राहिम के फॉलोअर्स को राजाई नहीं मिलती क्या? क्राइस्ट आते हैं, बौद्ध आते हैं, मोहम्मद आते हैं, उनके फॉलोअर्स को मुसलमानों को राजाई नहीं मिलती क्या? राजा बनते हैं कि नहीं बनते? तो उनको राजाई किसने दी? उनको भी राजाई देने वाला सब धर्मों का बाप है, वो उनको राजाई देते हैं। उनको भी राजाई मिलती है और साथ साथ भारतवासियों को भी राजाई मिलती है। ऐसे नहीं कि 21 जन्म के ही हमको राजाई मिलती है, हमको वेद के 2 बाप मिले, आत्माओं का बाप भी और मनुष्यों का बाप भी मिला। आत्माओं का बाप आकर आत्मिक दुनिया की रूहानी दुनिया की 2 युगों की राजाई देता है, और जो जिस्मानी बाप है मनुष्य शक्ति का वो हमको 63 जन्मों की राजाई देता है। 63 जन्म तो नहीं कहेंगे क्यों? आखिरी जन्म में तो राजाई होती है क्या? आखिरी जन्म में किसी देश में राजाई वो जिसे तो कहते हैं, अरे भाई अटल बिहारी का राज है, इंदिरा गांधी का राज है, लेकिन इंदिरा गांधी का राज है क्या? बड़ी सभा में पत्थर मार के नाक तोड़ देते तो राजाओं की ऐसी राजाई होती है क्या? आज राजा है कल गद्दी से नीचे उतार दीजिए, तो ये तो राजाई नाम मात्र की है, राजाई नहीं है, कांटों का ताज है। इसलिए आखिरी जन्म को छोड़ दो, बाकी जो 62 जन्म में राजाएं हुए हैं वो राजाई की प्राप्ति जो मनुष्य शक्ति का पिता है उसके द्वारा होती है। तो तुम अर्थ को जानते हो, वो लोग तो जो कुछ बोलते हैं सो अनर्थ ही बोलते हैं। वो लोग माने कौन लोग? दुनिया वाले हो, साधु संन्यासी, शास्त्र पढ़ने वाले, बड़े बड़े लोग, और चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के हो, वो सब अनर्थ बोलते हैं। और तुम जो कुछ बोलते हो तो सब आपका तरीके बोलते, तुम ब्रह्मा बोलेंगे तो तुम उसका अर्थ जानते हो। तो पूछो ब्रह्मा का अर्थ क्या है? शब्द है ब्रह्मा, तो अर्थ भी तो होना चाहिए। बाबा तो कहते हैं काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं शास्त्रों में, तो बताओ ब्रह्मा का अर्थ क्या है? ब्रह्मा का ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, तो दोनों शब्दों को मिलकर के बन गया ब्रह्मा। तुम अर्थ भी नहीं जानते, ऐसे ही बिगड़ अर्थ बकते रहते। बाप ने हमको तो अर्थ सही से बताया, हम अर्थ का अनर्थ करने वाले नहीं है। वो तो उल्टा ही समझाते रहते हैं, ओम का अर्थ कितना लंबा कर दिया है। ओम का अर्थ बाप कितना छोटा बताते हैं, ओम माने मैं आत्मा, आप उ मां, तीन कार्य जो करें तो ओम माने आत्मा। कौन सी तीन कार्य? अपने लिए अनेक जन्मों की सुख की स्थापना करे, दिव्य गुणों की स्थापना करे, शक्तियों की स्थापना करे, वो हुई ब्रह्मा के रूप में कार्य करने वाली मन रूपी शक्ति, मन के संकल्पों से शक्ति लगी। तो हर आत्मा ये ब्रह्मा का कार्य करती है। हर आत्मा जो पुराना पद है, आत्मा में भरा हुआ, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुराने दुर्गुण, पुरानी अशक्तियां, कमजोरियां, उनका नाश भी करती है। तो हर आत्मा शंकर के रूप में भी, शंकर माने तीसरा नेत्र, ज्ञान नेत्र, कहते हैं ज्ञान नेत्र खुला तो क्या हुआ? विनाश हो गया। काय का विनाश? स्वर का विनाश हो गया, स्वर का विनाश थोड़े हुआ। जो भी पुराना पन था, जो भी अनर्थ था, जो भी दुख था, अशांति थी, पापी थे, पापाचारी थे, उन पापों का अंत हो गया, पापों का हरण कर लेता है। तो कहते हैं हर हर बम बम भी जुड़ा हुआ, क्योंकि जब वो आता है तभी बम बनते हैं। क्या इन 100 वर्षों के अंदर ही बम नाम की शुरुआत होती है? उससे पहले कोई जानता भी नहीं था एटम बम क्या थी, सन 36 से पहले किसी की बुद्धि में एटम बम नाम का निशान भी नहीं था। जब आते हैं तो ये तीन कार्यकर्ता सुप्रीम सोल बाप के भी होते हैं और हमारी आत्मा के भी ये तीन कार्यकर्ता है। आत्मा के भी ये तीन कार्य, स्थापना, पालना और तो ओम का अर्थ ये है मैं आत्मा, स्थापना, पालना और विनाश करने वाली ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म तो ओंकार अहम आत्मा और ये मेरा शरीर, क्या ये मेरा शरीर और मैं मेरा, मेरा माने किसका? आत्मा, आत्मा परम धाम की रहने वाली है, क्या आत्मा परम धाम की रहने वाली है और शरीर परम धाम का रहने वाला नहीं है, शरीर इसी धाम का रहने वाला। पांच शब्दों की जो दुनिया है, एक तो दुनिया का है शरीर, वो दूर देश से आती है आत्मा, उसको निराकार दुनिया कहा जाता है। आत्मा जहां से आती है सृष्टि में, उसको निराकार दुनिया कहते हैं। तुमको ये बुद्धि में है, क्या कहा तुमको ये बुद्धि में है कि हम कहां के रहने वाले हैं? परम धाम के रहने वाले। उन ब्राह्मणों की बुद्धि में नहीं है क्या कि हम परम धाम के रहने वाले? उनकी बुद्धि में नहीं है, उन्हें पढ़ाई नहीं कराते कि सूर्य चांद सितारों की दुनिया से पार परम धाम है, वहां से हम आत्माएं आती हैं, वो नहीं पढ़ाते। वो कहते हम शरीर छोड़ जाएंगे तब हम परम धाम वासी बनेंगे, और तुम क्या कहते हो? हम जीते ही परम धाम वासी बनते हैं। असली अर्थ तुम्हारी बुद्धि में है कि तुम कहां के वासी हो और वो कहां के वासी हो। तो हम शांति धाम के रहने वाले में, ये तुम्हारी बुद्धि हमारी बुद्धि में है, फिर हम आकर के किस जन्मों की प्रारब्ध हो गई क्या हम परम धाम वासी बनेंगे? इस शरीर के साथ, शरीर छोड़ के नहीं, शरीर के साथ हम परम धाम वासी बनेंगे। और परम धाम वासी बनने के बाद फिर कहां जाएंगे? फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। अगर सर्विस अर्थ है, जैसे अभी हम सर्विस करते हैं, तो अल्पकाल के लिए बुद्धि परम धाम वासी बनती है कि सदाकाल के लिए बनती है? अल्पकाल के लिए बनती है, तो जाना आना होता है, जाते भी है बुद्धि होते, फिर वापस आते हैं तो फिर इस दुनिया में सेवा करनी पड़ती है। सेवा करेंगे तो सेवा का मेवा खुशी मिलती है, खुशी मिलती है तो हमारी अवस्था और भी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनती है, ज्यादा ही हमारी प्रैक्टिस पक्की हो जाती है। ऐसे प्रैक्टिस पक्के करते करते फिर अंत में हम सदाकाल के लिए परम धाम वासी बन जाते हैं। जब हमारे संपूर्ण हमारी स्टेज हो जाती है, जितना हम चाहें उतना निराकारी स्टेज में रहे और न चाहे तो निराकारी स्टेज में न रहे, ऐसी जब हमारी स्टेज हो जाती है तो फिर हम कहां वापस आते हैं? इस पुरानी दुनिया में हमको भटकने के लिए आना नहीं पड़ेगा, कहां आएंगे? हम रुद्रमाला के बढ़ के भले हैं, हम विजयवाला में फिर हो जाएंगे क्या? हमारे विकार उस समय निर्विकारी आत्मा बन जाएगी, निराकारी माना निर्विकारी, शरीर सहित हो जाए। परम धाम से वापस लौटे तो कहां हम जाएंगे? इस शरीर के साथ परम धाम में जाएंगे। परम धाम से लौट करके कहां जाएंगे? सुखधाम में जाएंगे, फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं आएंगे। तो शांति धाम को निराकारी दुनिया कहा जाता है, हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर 21 जन्मों की प्रारब्ध होंगे। तुमको तो कितनी खुशी होनी चाहिए क्या? वो कहते हैं हम शरीर छोड़ने के बाद सुख भोगेंगे, और तुम कहते हो हम जीते ही शरीर के साथ रहते हुए ही सुख भोगेंगे, तो खुशी किसको होगी? ज्यादा हमको ज्यादा खुशी होगी। अरे मरने की कोई तो खुशी होती है क्या? उनको तो कितनी खुशी होनी चाहिए, थैया अंदर में होनी चाहिए। तो डांस करते हैं ना, डांस सिखाने वाले क्या करते हैं? थक थक थैया थैया, तो किस इतने खुश होते हैं तो तुम्हारे अंदर ये तैयार किया चले जाए। वेद का बाप आया हुआ है, वो हमको पढ़ा रहे हैं, क्या सबसे बड़ी खुशी कौन सी? क्या और किसी जन्म में तो वेद का बाप आया ही नहीं, और इस जन्म में आया, और आया भी तो 500 700 करोड़ की दुनिया के बीच में किसको पढ़ाया जाए? मुट्ठी भर हम बच्चों को पढ़ाया जाए, और किसी को
नहीं
पढ़ाता। हम बच्चों को पढ़ाया जाए, वो ज्ञान का सागर है, पढ़ाने वाला कौन है? ज्ञान की नदी नहीं है। और ब्राह्मणों को कौन पढ़ाता है? उनको तो नदियां पढ़ाती हैं। ज्यादा ज्यादा कोई सरोवर पढ़ा रहा होगा, कोई ज्ञान का सरोवर होगा, पानी रुका रहता है ना उसका, वो पढ़ा रहा होगा, कोई टुब्बा टुब्बी पढ़ा रहा होगा। उनको पढ़ाने वाला कोई द्रौपदी कुंड होगा, द्रौपदी कुंड का भी पानी तो रुका हुआ रहता है, कोई कुआं होगा, कोई बावड़ी होगा, लेकिन हमको तो सागर पढ़ाया जा रहा है, जहां सारी नदियां जाकर के सागर में मिल जाती हैं। वो ज्ञान का सागर सत्य की आदि मध्य अंत को जानने वाला है। बाप को याद करते हैं तो जरूर हमारी बुद्धि में बैठना चाहिए कि कभी इस धरती पर आया होगा। एक धर्म वाले याद नहीं करते हैं, सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते हैं। इससे क्या साबित होता है कि जरूर इस धरती पर आया था, तो उसकी याद करते हैं, जरूर बाप आए थे, और जयंती भी मनाते हैं। क्या हम बाप की जयंती भी मनाते हैं? ये भी तुम बच्चे जानते हो, ये जो शिव जयंती मनाई जाती है, महाशिवरात्रि मनाई जाती है, ब्राह्मणों में जयंती मनाते हैं, और दुनिया में महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो ये जो जयंती मनाते हैं, इससे भी साबित होता है कि ब्राह्मण जो 70वीं शिव जयंती मनाते हैं, इससे क्या साबित हुआ कि 70 साल पहले भी आया था, ज्ञान का बीज बोया था। जब बीज बोया जाता है ना, शक्ति पैदा इसके लिए, तो गुप्त बोया जाता है या किसी को पता चलता है? गुप्त बोया, तो 70 साल पहले वो ज्ञान का बीज बो करके गया, तुम ये साबित कर सकते हो, इसलिए हम शिव जयंती मनाते हैं। नहीं तो भक्ति मार्ग में तो महाशिवरात्रि मनाते हैं, जयंती का मनाते हैं, और हम शिव जयंती मनाते हैं। माना 70 साल पहले आया था लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुआ, कोई तन में आया, और अभी तो विदेशियों के लिए प्रत्यक्ष है, और भारतवासियों के लिए भी प्रत्यक्ष होने वाला है। अभी सच्ची सच्ची शिव जयंती हम मनाएंगे। वो तथाकथित ब्राह्मण तो शिव जयंती मनाते हैं, तो भक्ति मार्ग वालों की देखा तो नहीं मनाते हैं कि इस दिन शिवरात्रि है, या उन्हें असली पता है किस दिन शिवरात्रि है? वो भक्ति मार्ग वालों की देखा तो नहीं मनाते हैं, ये थोड़े पता है कि प्रजापिता के अंदर कब आया। बाबू कहते मैं जब आता हूँ तो किसी को पता ही नहीं पड़ता। अरे गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तो किसी तारीख का पता पड़ता है क्या? पता ही नहीं पड़ता। तो वो भी तो आत्मा है ना, सुप्रीम सोल, वो कब आया ये किसी को पता ही नहीं। ऐसे झूठी शिव जयंती मनाते रहते हैं कि 70वीं शिव जयंती आज है। अब तुम तो कहते हो कि अभी सच्ची सच्ची शिव जयंती आने वाली है, जब भारतवासियों के लिए भी होगी और विदेशियों के लिए भी प्रत्यक्षता होगी।